الحمد لله والصلاة على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتين وحضرات. میرا خیال ہے کہ یہ میرا سنڈے کو اس طرح لیٹ ہونا اب تو روٹین بن گیا اور معذرت کی حدود سے بھی باہر بہت باہر چلا گیا. تو معذرت کے ساتھ ساتھ ایک ریکویسٹ یہ کر سکتا ہوں کہ اسے آپ لیٹ ہونے کو قبول ہی کر لیجئے تو میں شرمندگی سے بچ جاؤں گا. یہ ہمارے سوالات کا سلسلہ کیریڈ فارورڈ ہوا ہوا ہے. کسی صاحب نے پوچھا ہوا ہے کہ درود پاک پڑھتے وقت رکعت کا طاری ہونا کیا توجہ اور قبولیت کی علامت ہے؟ اصل میں رکعت جو طاری ہوتی ہے وہ ایک چیز کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے اور وہ ہے دل کے گداز کو. جس دل میں جتنا زیادہ گداز ہوتا ہے وہاں رکعت اتنی ہی جلدی طاری ہوتی ہے. تو ہمارے دل میں جتنی زیادہ محبت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے آتے ہی رکعت طاری ہو جاتی ہے. تو یہ بذات خود بڑی مبارک چیز ہے اور جس کو یہ حاصل ہو وہ قسمت والا ہے, ورنہ انہیں نے اگلا سوال یہ پوچھا ہوا ہے کہ جس سلسلہ تصوف میں سے کسی مرید کو حصہ مل رہا ہوتا ہے کیا انہی بزرگوں کے مزارات پر حاضری تک محدود رہنا کافی ہے؟ ہمیں ہر جگہ جانا چاہیے اور بغیر یہ دیکھے کہ صاحب مزار کس سلسلہ تصوف سے منسلک ہیں. ہمیں فاتح خانی کرنی چاہیے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے کلام الہی کی تلاوت کر کے اور پھر دعا کی جائے کہ اس کا ثواب ان صاحب کے روح کو بخش دیا جائے. تو رب تعالیٰ بہت مہربان ہے, جتنا ثواب ان کی صاحب مزار کی روح کہ نام اعمال میں لکھے گا اتنا ہمارے خود ہمارے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو ضرور جائیے, بلکہ ان بزرگوں کے مزارات کے علاوہ بھی اگر قبر کسی کی نظر آ جائے تو ضرور ہمیں فاتحہ پڑھ دینی چاہیے دور سے ہی. ان کا ایک سوال ہے کہ ایک ولی اللہ کے پاس بہت سے لوگ باقاعدگی سے حاضری دیتی ہیں, کئی سال بعد ان میں سے کچھ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا حصہ تو کسی اور ولی اللہ کے پاس یا کسی اور سلسلہ تصوف میں ہے. تو ولی اللہ ایسے لوگوں کو پہلے روز ہی ان کے اصل سلسلے کی طرف ڈائیورٹ کیوں نہیں کر دیتے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں کئی ایک فیکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ ہم अपनी कम इल्मी की वजह से, किसी शख्स के ज़ाहरी हुलिये की वजह से उसे वली अल्लाह समझ बैठे, उन साहब के अंदाज़े गुफ्तगू से हमें ये धोखा हुआ कि वली अल्लाह हैं, तो हम जाते रहे, इसी दौरान कहीं और से हमें पता चला कि हमारा हिस्सा तो फला जगह है, तो उसमें उस गरीब का क्या कसूर है। एक फैक्टर ये भी हो सकता है, एक फैक्टर ये हो सकता है कि मैं अगर किसी वली अल्लाह के पास जाके मैं बैठा, उन्होंने देखा कि मेरी रूह बहुत कसीफ है, उसमें कसाफत बहुत है, तो वली अल्लाह है, वो साहिब इल्म है, भले आदमी हैं, तो उन्होंने मेरे ऊपर काम शुरू कर दिया कि इसकी रूह की कसावट ख़त्म हो जाए। तो इसमें वक्त लगता है काफ़ी, वो मेरी ट्रेनिंग कर रहे हैं, मुझे दुरुस्त कर रहे हैं, मेरी कोताहियाँ और गलतियाँ वो निकाल रहे हैं, उनको दूर कर रहे हैं मुझसे, उसमें एक वक्त लग जाता है। तो जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि इस शख्स की रूह की कसावट अब दूर हो गई, अब ये तैयार है कि ये अगर कोई साहब इसे इल्म दे दें तो ये उसे रिसीव कर ले और उसको आगे चल पड़े, तो ये देख करके मेरी रूह की कसावट दूर हो गई, मैं तैयार हो गया इल्म को रिसीव करने के लिए, तो उस पॉइंट पर जाकर वो मुझे कह देते हैं कि देखें आपका हिस्सा मेरे पास नहीं, फला जगह है, आप वहाँ चले जाइए। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इन्होंने मेरा वक्त ज़ाया करा दिया, मैं आता रहा पिछले 10 साल इनके पास, तो ये बात तो ये मुझे पहले दिन भी कह सकते थे, ये मेरी अपनी कम इल्मी की वजह से है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि वो 10 साल तो मेरे ऊपर मेहनत करते रहे और मेरी रूह की कसावट को दूर करते रहे, ट्रेन करते रहे कि मैं इस लायक हो जाऊं कि मैं इल्म रिसीव कर सकूं। एक फैक्टर ये भी है, एक फैक्टर ये हो जाता है कि मैं किसी वली अल्लाह के पास गया, उन्होंने हसब दस्तूर नहायत खामोशी के साथ मेरी तरबियत की, जितना कुछ मुझे उनसे मिलना था वो उन्होंने मुझे दे दिया, इसमें 5-10 साल गुजर गए। बाद में उन्होंने महसूस किया कि अब फर्दर तरक्की जो है उसके लिए ज़रूरी है कि ये फला जगह चले जाए, तो उस स्टेज पर उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा हिस्सा फला जगह है, वहाँ चले जाओ ले लो। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक बच्चा प्राइमरी स्कूल में दाखिल हुआ, वहाँ उसने 5 साल गुजार लिए, उसके बाद अब वो किसी हाई स्कूल में चला जाएगा, वहाँ हाई स्कूल में वो दाखिल हुआ, वहाँ पढ़ता रहा, मैट्रिक जब कर ली तो वो फिर किसी कॉलेज में अब जाएगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी। और ये भी हो सकता है कि वो ऐसी जगह दाखला ले कि जहाँ प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज इकट्ठा है, तो वो प्ले ग्रुप में वहीं दाखिल हुआ और फिर ग्रेजुएशन करके वहाँ से निकला, ये भी हो जाता है, लेकिन ये कम स्कूल मिलेंगे ऐसे आपको। तो इसी तरह ये है कि एक सिलसिले में एक खास हद तक आप आगे गए, बाद में पता लगा कि अब फर्दर इससे अगले स्टेज फला जगह से इनको हिस्सा मिलेगा, तो उन्होंने आपको दयानतदारी से गाइड कर दिया। तो ये बहुत से मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, तो हम बजाय इसके कि बदगुमानी में जाएं कि इन्होंने मेरा वक्त ज़ाया किया, हमें ये समझना चाहिए कि हो सकता है कि इन्होंने मेरे साथ ये नेकी की है कि मेरी रूह की कसाफत दूर की है इतना अरसा, अब मैं इस लायक हो गया हूँ कि मैं अपना हिस्सा वसूल कर सकूँ, इन्होंने मुझे रेफर कर दिया। या दूसरे जो फैक्टर्स में बयान किए हैं, तो हमें शायद इसीलिए जनाब इमाम हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह साहब ने फरमाया था कि बदगुमानी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। तो जब हम बदगुमान होते हैं किसी से तो दर हकीकत हम झूठ की तरफ जाते हैं। तो बदगुमानी से बचना चाहिए, हुस्ने ज़न रखना चाहिए, उसमें फायदा है हुस्ने ज़न में। जनाब वालेकुम अस्सलाम। बात यह है कि ये बाज़ का ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। एक चीज की तालीम आपको आपके मुर्शिद दे रहे होते हैं तो वो उसके अंदर कोई चीज इजाफी चाहते हैं तो आपको भेज देते हैं कि फलां जगह चले जाइए। बाज़ का बच्चे को ट्यूशन की जरूरत होती है तो स्कूल टीचर जो क्लास टीचर है हमारा वो खुद कह देते हैं कि फलां जगह से ट्यूशन पढ़ लो। एक चीज ये भी हो सकती है कि आपके मुर्शिद आपको प्रैक्टिकल तरीके पर अदब का करीना सिखाना चाहते हैं, खुद उनके पास टाइम नहीं है, अपने पास उनके वो ऐसे हालात नहीं है कि आपको सिखा सकें, या बाज़ का मुर्शिद में तो मरव्वत बहुत होती है, उस मरव्वत में वो बहुत सी बातें नहीं कह पाते। तो इस तरीके से आपको कहीं भेजा, वहाँ तो मरव्वत नहीं मिलेगी तो वहाँ आपकी अदब की तरबियत हो गई। तो उसमें ये कई एक वजूहात हो सकती हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब मुर्शिद आपको कोई काम करने को कहते हैं तो कभी सवाल ना पूछिए, खामोशी से सर नीचे डालिए और उस पर अमल कर लीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा कि मुर्शिद साहब का इससे मकसद क्या था। तो बेहतर यह है कि सवाए इसके कि ठीक है जनाब मैं तामील कर रहा हूँ, हुक्म की तामील होगी, उसको हुक्म को बजा लाया जाए, फायदा हो जाता है। ये एक सवाल है कि क्या ये दुरुस्त है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे को फतह नसीब करता है तो उस वक्त उसकी जो ज़ाहरी हालत होती है बकिया सारी ज़िंदगी वो इसी हालत में कायम रहता है और जो उस वक्त पेशा होता है वो उसे तर्क नहीं करता, अगर हाँ तो वजह क्या है? मेरे ख्याल में ये बात शायद बहुत ज़्यादा दुरुस्त नहीं है। कैफियत इंसान की बदलती रहती हैं, फतुहात फकीर की ज़िंदगी में आती रहती हैं, जब उसे वलायत नसीब हुई, ये शायद इनका फतह से मुराद वो पर्टिकुलर लम्हा है जब किसी को वलायत अता कर दी जाती है उसके कंधे पर मोहर लगा दी जाती है। लेकिन ये एक पहला कदम है असल में, बल्कि यूं कह लीजिए कि मजीद फतुहात की जानिब ये इब्तदा है, उसकी पहला कदम है, उसका पहला कदम उठा है फतुहात की तरफ। एक सर्टन लेवल पर जाके वलायत अता हो जाएगी, वो स्टैंप लग जाएगी इंसान के कंधे पर शानों के दरमियान। अब वो क्वालिफाई कर गया है आगे जाने की, बिल्कुल इसी तरह कि आपको आपने जॉब के लिए ट्राई किया, एक जगह जॉब मिल गई आपको, वो इंतहा नहीं है बल्कि इब्तदा है। उसके बाद आपके जो परफॉर्मेंस है, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, आपके जो रवैये हैं, आपके जो एटीट्यूड्स हैं, उन पर बेस्ड फैसले होने हैं और आपको तरक्की मिलनी है। आपने सिविल सर्विस ज्वाइन की तो आप सेक्शन ऑफिसर यूटी कहलाएंगे, जब एकेडमी से निकले तो ट्रेनिंग के लिए आपको तो वो जो सेक्शन ऑफिसर के तौर पे जाएंगे तो आगे यूटी लिखा होगा अंडर ट्रेनिंग। इवेल्युएट किए जाएंगे ट्रेनिंग मुकम्मल होने पे आप, अगर डीएमजी में हैं तो आप असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग जाएंगे तो ऑब्जर्व हो रहे होते हैं, आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है और आपने वो सारी ट्रेनिंग कैसे की मुकम्मल, उस पर बेस्ड फिर आप बाकायदा तौर पे एसी बना दिए जाएंगे असिस्टेंट कमिश्नर। आपकी परफॉर्मेंस एवेल्युएट होती जाएगी हर साल, जिसको हम ACR कहते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो उन ACRs पर बेस करके आपको अगली प्रमोशन मिलेगी, उससे आगे करते करते आप फेडरल सेक्रेटरी के लेवल तक जा पहुंचते हैं ग्रेड 22 में। तो ये इब्तदा है। ये जो कैफियत का इन्होंने जिक्र किया कि ज़ाहरी हालत जो वलायत मिलते वक्त होती है क्या वही कायम रहती है, वो अननेचुरल है अगर वो कायम रह जाए तो, इसलिए कि हमारी कैफियत बदलती रहेंगी ज्यों ज्यों हमारे इल्म में इजाफा होगा और ज्यों ज्यों हमारे मर्तबे में इजाफा होगा। हमारी गुफ्तगू, हमारा उठना बैठना, हमारा लोगों के साथ डीलिंग, लोगों के साथ गुफ्तगू, वो तब्दील होती चली जाती है और उसे होना चाहिए, इसलिए कि इल्म हमें सब कुछ सिखाता है। तो जो जो इल्म बढ़ता है हमारे अंदर रिफाइनमेंट पैदा होती चली जाती है, तो वो कैफियत वो नहीं रहती जो पहली फतह नसीब होते वक्त होती है, तब्दील होती रहती है, उसे होना चाहिए। अगर नहीं होती इसका मतलब यह है कि हम स्टैटिक हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ सके। इसी तरह जो पेशा इन्होंने लिखा है वो जरूरी नहीं है, पेशे भी वक्त के तकाजे के मुताबिक चल जाएंगे। इसमें एक बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है कि जो जो आगे बढ़ता है इंसान, उसकी जिम्मेदारियां, उसकी ड्यूटीज, उसके रवैये वैसे हो जाते हैं कि वो उस पेशे को सूट नहीं करते जिस पे वो जब उसको विलायत मिली थी तो उस पे था, उसे नए तकाजों के मुताबिक अपना जॉब चेंज करना पड़ेगा, पेशा चेंज कर लेना पड़ेगा। हत्ता कि अगर ऐसी ड्यूटी पे चला गया जहां उसकी मसरूफियात रूहानी बहुत हो गई हैं तो जॉब नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अल्लाह को आंसरेबल है दयानदारी से काम करने के लिए, तो वो रिटेनरशिप पर चला जाएगा कि बतौर एडवाइजर काम करने लगे 2-4-6 ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और उसकी आमदनी उसके अखराजात के मुताबिक हो जाए, एक ये भी एक हो जाएगा। लेकिन ये उसी वक्त होता है जब रूहानी मसरूफियात बहुत बढ़ जाए, क्योंकि एज एडवाइजर तो कभी कभार उसकी ज़रूरत पड़ती है, और वो भी सिर्फ एडवाइस देने की हद तक, उसमें कोई ज़्यादा वक्त से नहीं देना होता। ऐसे मकाम पर जाके जब आदमी इस दर्जे को पहुंच जाता है वलायत के, तो दर हकीकत वहां उसे काम करके कमाने की हाजत नहीं रहती है। रब ताला उस पर ऐसी इनायात करता रहता है कि उसको रिस्क खुद ब खुद आने लगता है। लेकिन चूंकि ये आलमुल असबाब है, कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया है, यहां राइम एंड रीजन का होना बड़ा जरूरी है, तो लोगों के मुंह बंद रखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं ये काम करता हूं, वो कहीं एक लूज कमिटमेंट रखेगा अपनी, जैसे मैंने अर्ज किया कि रिटेनरशिप पर चला जाएगा, एडवाइजर हो जाएगा, कंसल्टेंट हो जाएगा। तो अब लोगों को दिखाने का एक बहाना है कि मैं यहां से रिस्क कमा रहा हूं, लेकिन दर हकीकत रब ताला ऐसी इनायात करता है कि अखराजात खुद ब खुद पूरे होते रहते हैं। यहां कई बार जिक्र हुआ तो मैंने अपने किबला मुर्शिद साहब के बारे में अर्ज किया कि उन्हें काम करते हुए किसी ने नहीं देखा, किसी से लेते नहीं थे कुछ, अखराजात पूरे करते थे। मुझे याद नहीं कि इतनी लंबी एसोसिएशन में, और बड़ी कुर्बत की मेरी एसोसिएशन थी अपने मुशर साहब के साथ, मैंने कभी देखा हो कि उनका किराया लेट हुआ हो एक दिन भी। मैंने नहीं देखा कि उनका बिजली का बिल कभी लेट हुआ हो। फिर मैंने ये भी देखा कि मुझे मालूम था अच्छी तरह कि उनकी जेब बिल्कुल खाली है। तो एक साहब जिनकी तबीयत में शरारत जरा ज्यादा थी, शरारत मैं नेगेटिव सेंस में कह रहा हूं, वो बच्चों वाली शरारत नहीं, दूसरी शरारत थी, तो उन्होंने ये जानते हुए कि मेरे मुर्शिद साहब की जेब में कुछ नहीं है, खाली है, मेरी मौजूदगी में, उनसे कहा कि आज तो आपसे मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब मैं सोच में पड़ गया कि ये भी यहीं बैठे हैं, मुर्शिद साहब भी यहीं हैं, मैं भी यहां हूं, किस अंदाज में इंतहाई खामोशी के साथ अपने मुर्शिद साहब की जेब में पैसे डालूं कि मेरे मुर्शिद साहब को भी पता ना चले कि मैंने उनकी जेब में पैसे डाल दिए, ये साहब भी ना जान सकें तो मेरे मुर्शिद साहब चुपचाप वो निकाल के इन्हें दे देंगे। तो मैं इसी किस्से में था, तो मैंने देखा कि मेरे मुर्शिद साहब ने खाली जेब में हाथ डाला और उसको जेब में यूं मस करते रहे, तो निकाला तो वो बिल्कुल नया नोट था एक, उसको देखा, कहने लगे अरे भाई ये नहीं चाहिए, वो रख लिया जेब में, दोबारा वहीं हाथ मस करते रहे, तो वो 10 रुपए का नोट निकल आया, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, तो रख दिया। फिर वो सीधा करते रहे तो बिल्कुल नया नोट 50 रुपए का निकला, वो 50 रुपए 1982 के, आज के नहीं, तो कहने लगे हाँ ये चाहिए था, तो वो दिया कि ये लो ले लो, बिल्कुल नया नोट था। तो आदमी उस मकाम पर चला जाता है। तो वो आदमी फिर मुझ पर जाहिर हो गया कि वो असल में हुआ क्या था, इनका एक सवाल है कि वली अल्लाह जब कोई रूहानी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं तो क्या वहाँ की आबो हवा और माहौल उनकी सेहत को मुतासर करते हैं? मैं अभी एक अर्ज कर रहा था कि अलमुल असबाब है, कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया है। रब ने हमें इंसान बनाया है और कुछ बशरी तकाजे हैं जो तब्दील नहीं हो सकते। ये हम अपनी नासमझी की वजह से औलिया कराम को मफाकुल फितरत हस्ती बना के बैठे हुए होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। औलिया कराम पर भी अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। बीमारी और तंदुरुस्ती औलिया कराम पर भी आती रहती है। औलिया कराम की औलाद भी उनका साथ छोड़कर अल्लाह के पास चली जाती है। यहाँ एक दिन मैंने एक चीज अर्ज की थी कि वली अल्लाह की एक पहचान ये भी है कि उसके अकीदतमंदों से ज्यादा उसके मुखालफीन की तादाद होती है। उसकी रेशियो भी मैंने बयान की थी कि 1/3 अगर अकीदतमंद है तो 2/3 उसके मुखालफीन होंगे हमेशा। हासिद बहुत होते हैं, इन पर तोहमतें लगती रहती हैं। बल्कि यूं कहिए कि अगर हम तारीख उठा के देखेंगे तो अनगिनत औलिया कराम हैं जो झूठी तोहमतों की वजह से ही फांसी चढ़ा दिए गए। तो औलिया कराम इन तमाम चीजों से गुजरते रहते हैं, इसलिए कि वो इंसान हैं। हाँ, जो इल्म उन्हें मिला है वो उनकी तमाम हिस्सों को आम आदमी की निस्बत 6 times ग्रेटर कर देता है। इसीलिए औलिया कराम को आप देखेंगे, अगर किसी वजह से जख्मी हो गए वो, तो आम आदमी जख्मों की तकलीफ की वजह से तड़पेगा, वो आराम से बैठा आपसे बात कर रहा होगा, पेन बेयरिंग कैपेसिटी उसकी बहुत हो जाती है, बीमारी के खिलाफ लड़ने की कैपेसिटी उसकी बहुत हो जाती है। वो बाज़ुकात अपनी स्ट्रेंथ की वजह से मेडिकल साइंस को डिफीट कर जाता। ये तो इल्म की वजह से उसके अंदर तब्दीली आती है कि उसमें बर्दाश्त बहुत बढ़ जाती है, उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट आम आदमी की निस्बत काफी रेज्ड होता है वो। लेकिन ये नहीं होता कि वो गैर फितरी जिंदगी गुजारे, तो जो आबो हवा है, माहौल है, वो सब उस पर असरअंदाज होते हैं। भूख प्यास सब उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। लेकिन बात सिर्फ बर्दाश्त की है। दूसरा फकीर आदमी जिस बारे में बहुत मोहतात होता है वो ये होता है कि मेरी जुबान से उफ न निकले कि ये नाशुक्रगुजारी हो जाएगी, तो जलती हुई आग में उसको आप उठा के फेंक दीजिए, वो खामोशी से जल मरेगा बगैर कोई आवाज निकाले, इसलिए कि हाय कहना उसके नजदीक नाशुक्रगुजारी है, कि रब का गिला है, रब का शिकवा है। वो ये काम नहीं करता कभी। इन्होंने फर्दर पूछा है कि अगर कोई शख्स अल्लाह से मोहब्बत तो करता है لیکن خلق خدا کے سامنے اس محبت کا دعویٰ یا اظہار نہیں کرتا تو کیا وہ محبت کی آزمائش سے بچ جائے گا یا اسے ہر حال میں ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا؟ یہ ٹیسٹ اس بات کا نہیں آتا کہ مخلوق کو کتنا پتا ہے کہ وہ فلاں آدمی اپنے رب سے محبت کر رہا ہے. اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, بلکہ یہ تو ایک اولیاء کرام کے نزدیک نگیٹو پہلو ہو جائے گا کہ کسی شخص کے بارے میں, کسی ولی اللہ کے بارے میں لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے یا وہ لوگوں کو یہ دکھا دے کہ میں اللہ سے بہت پیار کرتا ہوں. وہ تو نگیٹو سائیڈ ہے اس کی. جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کتنی کر رہا ہے. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے, تو وہ تو اس کو ٹیسٹ کرے گا, وہ اس کو تو نہیں کرے گا کہ میری مخلوق کو کتنا پتا ہے اس کے بارے میں. تو ٹیسٹ میں سے تو گزرنا پڑے گا بہرحال, اس کے بغیر تو رب دوست نہیں بنائے گا اسے, پہلے اسے ٹیسٹ کرے گا. اور اس ٹیسٹ کے اندر بھی پاس صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو بدترین سچویشن میں بھی جینرلی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خوش ہیں, راحت میں ہیں, کمفرٹ میں ہیں. پاس وہی لوگ ہوتے ہیں. اور اگر چہرے سے اظہار ہو گیا کہ تکلیف میں ہے تو فیل ہو جائے گا بندہ. عام زندگی میں بھی اگر ہم ایک کوشش کر لیں تو ہم دیکھیں گے کہ انعامات بڑے بہت بڑے پیمانے پر ملنے لگتے ہیں. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی صورتحال ہو, آپ مسکراتے رہیے, ہنستے رہیے, لوگوں پہ یہ ظاہر کیجئے کہ آپ بڑے مزے میں ہیں. اللہ تعالیٰ اسی شکر گزاری کے برکت سے اس مصیبت سے بھی نکال لیتا ہے اور اس کا ریوارڈ بھی دے دیتا ہے فردر. ایک سوال ہے کہ کیا شیخ اپنے کسی مریض کو سر عطا کرنے سے پہلے بطور آزمائش کسی خلاف شریعت یا غیر منطقی کام کرنے کا حکم دے سکتے ہیں؟ اس میں بنیادی طور پر تین چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں. کوئی بھی شخص شیخ کے مقام پر پہنچا ہی اس لیے ہے کہ وہ شریعت کو فالو کرتا ہے, سنت کو فالو کرتا ہے. اس کے بغیر قرآن کو فالو کیے, بغیر سنت کو فالو کیے کوئی شخص ولایت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. تو پہنچے گا اس مقام پر اسی وقت جب وہ شریعت اور سنت کا پابند ہوگا. تو جو شخص خود شریعت کا پابند ہے, سنت کا پابند ہے, وہ غیر شرعی کام کا حکم کیسے دے گا؟ بنیادی چیز یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لاجیکل اور ان لاجیکل یہ دونوں میرے نزدیک ریلیٹو ٹرمز ہیں. جو چیز میرے علم کے احاطے میں آ جاتی ہے تو میں اسے پرکھ سکتا ہوں کہ یہ لاجیکل ہے یا نہیں ہے. किसी चीज को ये जानने के लिए कि लॉजिकल है, उसकी यार्ड स्टिक मेरे पास होना बड़ा जरूरी है, और मेरे पास यार्ड स्टिक जो है वो मेरा हासिल करता इल्म है जो भारतौर महदूद है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे नजदीक ये लॉजिकल लव्स, लॉजिकल ये एक रिलेटिव टर्म है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप रखती है मेरे पास अवेलेबल इल्म के साथ। मैं उसी यार्ड स्टिक पर नापूंगा, लॉजिकल है ये लॉजिकल। लेकिन ये हो सकता है कि दूसरे साहब जिनके पास मुझसे दुगना इल्म है, उनके यार्ड स्टिक पर वो चीज लॉजिकल हो रही हो जिसको मैं इलॉजिकल कह रहा हूं। तो लॉजिक का मामला और है, वो फिक्स नहीं है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है उस इल्म के साथ जो मुझे हासिल है, या मेरी अकल, अकल भी मेरी महदूद है। लेकिन शरीयत ऐसी चीज है जो अजल से अबद तक की फिक्स है, उसमें कहीं कोई तब्दीली नहीं आएगी, उसमें चेंज नहीं हो सकती। उस पर हम परख सकते हैं, कोई भी परख लेगा उस बात को। एक बात तो ये ग्राउंड है उसकी। हां, एक काम हो सकता है कि अगर मुझे कहीं ये शक हो अपने किसी जो शेख है, उन्हें अगर शक हो किसी मुरीद के बारे में, कि ये अभी शायद इल्म में इतना पुख्ता नहीं हुआ है, अभी इसका नफ्स इसको ओवरकम कर जाएगा, नफसानी ख्वाहिश, तो मेरे मुर्शिद मुझे परखने के लिए कोई गैर शरई काम कह दें, और वो कहते वक्त भी बड़े गौर से मेरे फेस को देख रहे होंगे, और जब मैं सुन चुका हूंगा तो भी मेरे फेस को देख रहे होंगे, वो असल में रीड कर रहे होते हैं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो अगर मैं अभी कच्चा हूं, तो मैंने कहा जी ठीक है मैं कर लूंगा, तो उसी वक्त रोक देंगे कि ये मत करना, ये शरीयत के खिलाफ है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि तुम किस हद तक पुख्ता हुए हो, फौरन मना कर देंगे मुझे, तो मेरी नए सिरे से तरबियत शुरू हो जाएगी। और अगर मैंने उनसे कहा कि साहब आपका हुक्म है लेकिन बात ये शरीयत के खिलाफ हो जाएगी, तो बड़े खुश होंगे इस बात पे। अदरवाइज कोई शेख अपने मुरीद को शरा के खिलाफ कोई काम करने का हुक्म कभी नहीं देगा। जनाब सजा साहब, बात यह है कि मैं किसी भी आदमी की कही हुई बात पर कोई कमेंट करने की पोजीशन में नहीं होता, इसलिए कि मेरा एक पुख्ता ईमान है कि ये जितने भी हजरात हैं ये सब मुझसे बेहतर लोग हैं, मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, मुझसे ज़्यादा बड़े लोग हैं। तो अगर कोई बात कोई कह रहा है तो यकीनी तौर पर उसके पास उसकी अपनी वजूहात होंगी, तो मैं उसको कंडेम कैसे कर दूं? बड़ी सिंपल बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि शरीयत तो मुय्यन है, उसमें सरमोक कोई तब्दीली आ नहीं सकती कयामत तक। एक सीधी सी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब से इतनी ज्यादा नफरत फरमाई है कि अगर कभी मेरे जिस्म पर पेशाब का कोई कतरा लग जाए तो मेरा दिल चाहता है कि मैं जिस्म के उस टुकड़े को काट के फेंक दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मेरे सामने है, तो पीना तो बड़ी दूर की बात है। ये चीजें तसव्वुफ में आई हैं हिंदुइज्म से, वहां ये सब चीजें गुरु की बात जो है उसको वहां ये काम होते भी हैं, तो ये वहां से दर आई हैं, वरना तसव्वुफ का इनसे क्या वास्ता है। तसव्वुफ तो प्योरली ऐसी चीज है कि जो आपको ट्रेन करती है कि शरीयत पर अमल करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात पर अमल करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फॉलो करें। बड़ा सामने की बात है, उसको फैसला आदमी खुद कर ले, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर नहीं कह पाऊंगा क्योंकि अपने से बड़े किसी आदमी की बात को मैं रद्द नहीं कर सकता। इंशाल्लाह ताला इनके बाकी सवालात के जवाब नेक्स्ट संडे बशर्ते जिंदगी देंगे। अस्सलामु अलैकुम।